interview with Raj Abhishek at BHU campus on 2nd of May, done by Aheli Chaudhary. The recording begins now. Raj, थोड़ा सा अपने आप के बारे में मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मतलब कहाँ से हैं घर में कितने लोग हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं
मैं राज अभिषेक बेसिकली पटना से हूँ बट मेरी पढ़ाई लिखाई आई वॉज अपब्रिंगिंग डॉटर
जमशेदपुर
मैं जमशेदपुर में पढ़ाई लिखाई सारा कुछ हुआ घर पे पिताजी हैं वो खुद का अपना खेती बाड़ी चलता है और मम्मी हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं और एक छोटा भाई है जो अभी देहरादून में बीटेक कर रहा है
अच्छा।
मैं बी एच यू में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हूँ
कौन से डिसिप्लिन से
हिस्ट्री ऑफ आर्ट
हिस्ट्री कर रहे हैं
हिस्ट्री ऑफ आर्ट
ओके अच्छा डिफरेंट सब्जेक्ट ओके तो इस जो पूरा मूवमेंट हुआ या क्या कर रहे थे यहाँ बी एच यू में स्टूडेंट लाइफ में क्या चला और फिर इसमें कैसे जुड़े
ये मूवमेंट जो था ये मतलब अभी मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मतलब चेंज जो लाया है ना पिछले 3-4 सालों में तो ये मूवमेंट बहुत बड़ा चेंज था पहले मैं एबीपी का प्रोमिनेंट मेंबर था
अच्छा
तो 2017-23 सितंबर था
अच्छा
मैं बहुत प्रोमिनेंट मेंबर था मूवमेंट से भी जुड़ा मूवमेंट एज ए इंडिपेंडेंट ज्वाइन किया था पता भी नहीं था कि मूवमेंट होने वाला है या पहले से कुछ ऐसा होने वाला है यूनिवर्सिटी में पता चलता था पर जिस पार्टी से जुड़ा था वो कभी ऐसा कुछ एक्टिविटीज लेके आई नहीं थी तो कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था कि आंदोलन कैसे होता है
तो ये एबीवीपी से कैसे जुड़ गए आप
एबीवीपी से एक होता ना आप आए यहाँ पे तो देख रहा कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्टिव है मतलब वो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दिखता है कि हाँ एक एक्टिव कोई है अगर करा रहा कोई पार्टी तो मतलब एक नया यूथ जो ग्रेजुएशन में आता है यूनिवर्सिटी में स्कूल लाइफ से निकल के तो उसके लिए कुछ फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो ये सब कुछ हो रहा है तो फिर उसको ज्वाइन किया उसके साथ 2-1.5 साल लगभग काम किया एबीवीपी के साथ कैंपस में पर किसी मूवमेंट में ऐसा था नहीं कि मतलब कभी भी पहले रहा हो इंटरेक्शन हुआ किसी मूवमेंट से या कभी पढ़ा लिखा भी नहीं था 23 सितंबर वाली जो घटना हुई थी 21 सितंबर को हम लोग आराम से मतलब बैठे हुए थे ऐसा कुछ था नहीं कि पता चल रहा है यूनिवर्सिटी में और सब लोगों को इन्फॉर्मेशन और प्लान हो और जाके करना आराम से हम लोग साकेत नगर कमरे पर अपने बैठे हुए थे फेसबुक पोस्ट अचानक से आने शेयर हो गए कि एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई है सो दे आर मोबिलाइजिंग लोगों को पता चला तो हम लोग रात को बस ऐसे ही कैंपस ऐसे ही निकलना होता है मिड सेमेस्टर का टाइम था तो हम लोग रात को चाय पीने निकलते थे रात को निकले थे तो कैंपस शांत था कुछ हुआ नहीं था बस पता चला कि लड़कियां मोबिलाइज हुए हैं एंड वो प्लान कर रही कि सुबह वो लोग धरने पे बैठेंगे अगर वाइस चांसलर उनसे नहीं मिलते हैं तो सुबह फिर हम लोग जाके सो गए रात भर वही मैसेजिंग चलते रहा लोग फेसबुक पोस्ट करते रहे सुबह लगभग 7 बजे लगभग जब मेरी नींद टूटी तो मतलब मेरे रूममेट्स नहीं थे रूम पर तो मैंने उनको कॉल किया भाई साहब कहाँ हो बोले कि लंका गेट पे आ जाओ यहाँ कुछ मूवमेंट चल रहा है मतलब पॉलिटिक्स और मूवमेंट को लेके क्रेज रहा है बचपन से क्योंकि जिस जगह से हूँ तो वहाँ पे काफ़ी ये चलता है लोगों में कि आंदोलन करना चाहिए लोगों को सही के लिए आवाज़ उठानी चाहिए तो ये रहा है पर कभी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हुआ नहीं था वहाँ पहुँचा तो भीड़ थी काफ़ी अच्छी तो एज ए स्टूडेंट इंडिपेंडेंट मैं ज्वाइन किया था उस मूवमेंट को 21 को घटना हुई थी 22 को 21 को पूरे दिन हम लोग बैठे रहे थे 22 को भी नहीं 22 को पूरे दिन हम लोग बैठे रहे थे 21 को घटना हुई थी शाम में 22 को हम लोग पूरे दिन बैठे रहे इसी बीच 22 जिस दिन मूवमेंट शुरू हुआ था उसके 10-11 बजे तक ही लगभग मतलब वाइस चांसलर के कुछ अपने आदमी वो आ गए थे मतलब वहाँ पे दे हैव ऑक्यूपाइड देयर प्लेसेस फिर उन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोपेगेंडा स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि यहाँ के जो लड़के हैं वो गए हैं कहीं से पैसे उठा रहे हैं आंदोलन के नाम पे तो ये सब चीज़ करके उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की ये 10-15 का ग्रुप था ये टाइम टू टाइम आते जा रहा था पर लड़कियों का जो था मतलब एक मॉरल वो रहता है ना वो उनका बना हुआ था स्टूडेंट की नहीं हमको लगे रहना है किसी से भी कुछ भी हो जाए बट हमको अपनी डिमांड पूरी करवानी है
ये जो वाइस चांसलर के लोग थे इनके साथ आप संपर्क में थे ये एबीवीपी के लोग थे
नहीं एक्चुअली ये एबीवीपी के भी लोग नहीं थे ये मतलब वाइस चांसलर के अपने हैं मतलब
स्टूडेंट्स हैं ये लोग
कुछ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं कुछ बाहरी भी हैं
अच्छा
हाँ तो ये पूरा उनका चलता रहता है सिंडिकेट है ये पूरा यूनिवर्सिटी में कि आपको अगर कहीं करना है तो वाइस चांसलर का इजीली पेनिट्रेट इनटू योर कैंपेन और एनीथिंग लाइक दैट तो उन्होंने कराया फिर लगभग शाम को फिर वो लोग शराब पी के आए मूवमेंट के पीछे और वहाँ से फिर लड़कियों को गालियाँ हम लोगों से बकझक मतलब वो ऐसा प्रोवोक कर रहे थे कि हम लोगों की तरफ से कुछ एक्शन हो और फिर लड़ाई झगड़ा हो कुछ वायलेंस क्रिएट हो और वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर भी शांति बना रहेगा। फिर शाम को लगभग 8:30 बजे के लगभग अचानक से हम लोग चाय पीने के लिए लंका गेट के वहीं मूवमेंट चल रहा था, तो चाय पीने के लिए आ गए थे आगे, तभी अचानक से हल्ला सुनाई दिया कि महामना जी के ऊपर काली खोद दी गई है। तो हम लोग वहीं सामने बैठे थे, वहाँ से जस्ट 15 मीटर की दूरी पे महामना जी की मूर्ति है, और वो ऐसे चौराहे पे जहाँ पे मतलब कोई इमेजिन किया, मतलब कोई कर भी नहीं सकता। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये काली पोतने का। फिर थोड़ी देर बाद आया कि काला झंडा लहराया गया BHU के गेट के ऊपर, तो तरह तरह की अफवाहें वो शुरू हो गई शाम से ही चलते रहा। 22 की रात को वो पहली बार था जब BHU के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रात को 8 बजे लड़कियाँ अपना गेट तोड़ के बाहर निकली थी। रात को 8 बजे गेट टूटा था, लड़कियाँ बाहर निकली, रात भर रहीं। इन सब चीज़ों को लेकर के भी मतलब एक बना गया कि लड़कियाँ बाहर निकली और चले गई पार्क और चले गई घाट, मतलब मूवमेंट को कमजोर कर, हर चीज़ हर स्तर पे उन्होंने कोशिश की। प्रॉक्टर्स आते रहे, पुलिस वाले आते रहे धमकाना सबको, एक तुम लोगों को टारगेट करा जा रहा, तुम लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी, तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट जिनको लगा था कि कुछ अच्छे के लिए करना है, वो 300-400 लोग जो मतलब एक साथ आए थे, वो स्टार्टिंग से जो बैठे वो बैठे ही रहे, और मतलब एक भी अगर उसमें ऐसा नहीं था कि कोई बाहरी था, ईच वन ऑफ देम वॉज अ BHU स्टूडेंट, और जिसको लेकर आरोप भी लगा कि बाहरी लोग आए थे। हम लोग पहले दिन से 7 बजे शाम से 22 की थे और 23 की रात तक, जब 11:32 मुझे एग्जैक्ट याद है, मैंने फ़ोन पे कॉल पे बात की थी और मैं बैठा था और पुलिस ने लाठी चार्ज की थी पीछे, वो लास्ट मोमेंट है। तो मतलब सुबह के 7 से 23 की 11 रात के 11:30 बजे तक वो हम लंका गेट पर बैठे रहे थे उस बीच।
फिर क्या हुआ, मतलब आप नेक्स्ट डे भी, आप
नेक्स्ट डे भी हम बैठे रहे। हाँ। अचानक से शाम को लगभग 10 बजे, रात हो गया था 10 बजे, बीच बीच में मतलब आ रहा था कि वाइस चांसलर आ रहे कभी इस हॉस्टल कभी उस हॉस्टल, तो इस चीज़ को लेकर के लड़कियों में थोड़ा सा मतलब ये हुआ था कि हाँ चलो वाइस चांसलर आ रहे मिलने के लिए, तो कभी वो अपने हॉस्टल चली जा रही मिलने के लिए, MMB चली जा रही हैं, कभी त्रिवेणी चली जा रही हैं, तो कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो कुछ लड़कियाँ इधर चली, तो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था, पर फिर भी 100-150 लोग बैठे हुए थे। उसके बाद ये हो गया था ना, जब वाइस चांसलर की अफवाहें जब उड़नी शुरू हुई, और उन्होंने प्रॉपर अफवाहें भी नहीं थी एग्जैक्टली, वो प्रॉक्टर्स के द्वारा और चीफ प्रॉक्टर इनफैक्ट ओएन सिंह के द्वारा ही और वार्डन के द्वारा मैसेज भिजवाया जा रहा था कि आप लोग हॉस्टल पहुंचिए और वाइस चांसलर वहाँ मिलने के लिए पहुंचेंगे। ऐसा 3 बार हुआ, MMV में शाम को हुआ था 3:30 बजे के लगभग, उसको लेकर के लगभग 300-400 रैफ के जवान MMV गेट से लेकर लंका गेट तक खड़े थे। मुझे पता नहीं क्यों वाइस चांसलर को 300 रैप जवानों की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई थी अपने कैंपस में घूमने के लिए। तो लड़कियों में भी गुस्सा आ गया कि नहीं आ रहे हैं और बेवजह सब लोगों को बुला बुला के कर रहे हैं। तो सब लोग वहाँ बैठ गए अलग अलग जगहों पर, कुछ लोग त्रिवेणी के पास बैठ गए थे अपने हॉस्टल के पास, लड़कियों को अपने हॉस्टल के पास बैठे, कुछ लोग VC लॉज पर बैठ गए थे, मतलब अब अलग अलग, पहले लंका गेट पर धरना शुरू होकर अब 3-4 जगह हो गया था, और हर जगह पीसफुल था, कहीं कुछ भी नहीं था। तभी 10 बजे अचानक से हम लोगों को फ़ोन आया, हमारे एक सीनियर हैं गौरव भैया और अविनाश भैया, तो वो VC लॉज पे बैठे थे और हम लोग लंका गेट पे बैठे थे। 10 बजे उनका कॉल आया कि राज हम लोगों को पिटाई पड़ गई, मतलब उनका ये कॉल था और फ़ोन कट गया था। फिर हम लोग बढ़े आगे, जब तक हम लोग सुंदरलाल के गेट तक पहुँचे तो देखें कि वो लोग बदहास दौड़ते आ रहे हैं, गौरव भैया के हाथ, वो हाथ पूरा फटा हुआ था, ये पूरा मतलब बोन पूरा वाइट दिख रहा था, वो पूरा फटा हुआ था दिख रहा था। अविनाश भाई के पीठ पे पूरे लाठी से मारे हुए थे, मतलब एग्रेशन आया हम लोगों पे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आया। मतलब एक बोलते हैं पर कि जब आप अच्छे कॉज के लिए जुड़ो तो फिर अपना एग्रेशन और ईगो साइड कर देना चाहिए, तो मतलब उस चीज़ को भी बर्दाश्त करके पहले हमने उन लोगों को हॉस्पिटल भेजा, और हम लोग बोले कि भैया सीनियर्स थे, बाकी जो नीचे वहाँ बैठे थे जो गेट पे लड़के लड़कियाँ बैठे थे, उनमें थोड़ा सा ये था कि पॉलिटिकल समझ नहीं थी उन लोगों में, मतलब इमैच्योर थे थोड़े पॉलिटिकली, और हम लोग थोड़े से संगठन किसी भी संगठन से जुड़ते तो पॉलिटिकल समझ आ जाती है कैसे आपको काम करना चाहिए। फिर हम लोगों ने कुछ लोग थे, हम लोगों ने बोला कि जितने लोग हैं उनसे बोलो कि शांति बनाए रखें, कुछ भी वायलेंस नहीं हो, मार खाए हैं जितने मारेंगे वो लोग हम लोग मार खाते रहेंगे। लेकिन पीछे से प्रॉक्टर्स हम लोग वहाँ खड़े ही थे, बातें ही कर रहे थे, VC लॉज से वो लोग लाठी मारे थे, और फिर प्रॉक्टर पीछे से पत्थर लेते हुए, पत्थर चलाते हुए, ईंटें चलाते हुए आई और हम लोगों को दौड़ाई। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल के आगे अपने गेट पे फिर बैठे रहे, वो लोग प्रॉक्टर वहाँ से चली गई। 10 बजे हुआ था, उसके 1.5 घंटे के बाद हम लोग वहाँ बैठे होते, पीछे फोर्स बहुत ज़्यादा जम गई थी। अब अंदेशा हो गया था कि जब वहाँ लाठी चार्ज हुई तो यहाँ लाठी चार्ज होना ही होना है, हम लोगों को ये पता चल गया था। फिर भी हम लोगों ने बात की, चलो जो भी होगा बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं। लास्ट मुझे याद है 11:32 मुझे कॉल आया, मैं कॉल पर बात किया और लास्ट टाइम मेरे साथ प्रियेश भैया था, प्रियेश पांडे इज ऑल्सो सीनियर फ्रॉम BHU। मैं उनसे पूछा, प्रियेश भैया लाठी पुलिस रखी हुई है अब क्या करना, तो उनका एक सेंटेंस था कि राज अब बैठे हैं तो अंतिम सांस तक बैठेंगे। बोला ठीक है भैया बैठते हैं, और मतलब हम लोग वो फ्रंट रो में थे, सबसे फ्रंट रो, अगर लाठी खाएंगे तो हम लोग फ्रंट रो में। हम लोग वहाँ बैठ गए, अभी 2 मिनट नहीं बैठने हुआ था, पीछे से पुलिस की गालियाँ सुनाई थी। मतलब वो इतने भद्दे स्लैंग्स में गालियाँ थी, लाठी पटकते हुए कि भागो यहाँ से, आई कैंट यूज दैट स्लैंग्स। भागाते हुए वो आए और मतलब हम लोग तभी भी हाथ पकड़ के आँख बंद करके, वो जो उतने 70-75 लोग बैठे हुए थे गेट पे, वो सारे लड़के लड़के
कंटिन्यू
70-75 लोग थे, हम लोग हाथ पकड़ के बैठे रहे। फिर सबसे पहली लाठी जो हम लोगों के पीछे पड़ी, उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि हुआ क्या। फिर भी हम वहाँ बैठे रहे, अचानक से क्या हुआ कि पीछे जो लोग देखने के लिए बैठे हुए थे, मतलब एक तो वो धरना चल रहा था, पर धरने से ज़्यादा लोग मजाक उड़ाने के लिए और कुछ अलग ऐसे, मतलब लोकल का भी जो एक सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं था यहाँ बनारस में, कि लड़कियाँ बैठी हैं किसी अच्छे कॉज के लिए, लड़के बैठे हैं, बच्चे हैं, तो एक मॉरल सपोर्ट भी जो होना चाहिए वो बनारस की पब्लिक से नहीं मिला था हमें उस दिन तक। तो काफ़ी भीड़ जमा थी पीछे देखने वालों की। तो पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम लोग में से कोई वहाँ उठा नहीं था। लाठी चार्ज करने के समय क्या हुआ कि पीछे के जो लोग खड़े थे जो देख रहे थे वो भागना शुरू कर दिए। भागने के टाइम क्या हुआ कि वो हमारे ऊपर से चढ़ के भागने लगे। तो हम लड़के थे, हम किसी तरह एडजस्ट करके, पर लड़कियाँ जो सामने बैठी थी ना, तो उनको लगा कि पुलिस अब लाठी चार्ज कर दी है और पीछे साइड हम लोग फेस करके बैठे हुए थे, तो पुलिस पीछे से आ रही थी। हम लोगों को, उन लोगों को लगा कि लड़का पुलिस लाठी चार्ज की, बस वो लोग उठ के भागेंगे। उसी भगदड़ में कितने लड़कियों का सर टूटा है, कितने लोगों का हाथ टूटा, और पुलिस बेरहम की तरह वो मारना शुरू किया हम लोगों को। हम लोग भागते भागते किसी तरह गए, मैं सुंदरलाल हॉस्पिटल पहुंचा, पुलिस वहां भी अंदर आई, किसी तरह मेरा चप्पल टूट चुका था, भूखे थे, मैं 2 दिनों में मुझे नहीं याद आ कि मैंने कुछ खाया होगा, बस चाय पे हम लोग वहां जिंदा थे, चाय और बिस्किट लेते थे और 5 रुपये की बिस्किट, और बस वही खा के जिंदा थे पूरे 2 दिन और मोमेंट में रहे। वो भागते भागते, हालत बहुत बुरी थी, भूख भी थी, चप्पल उपल टूट गया था, पुलिस की लाठियों का डर और पूरे कैंपस में पुलिस। हम लोग भाग के सुंदरलाल हॉस्पिटल में डिलीवरी वार्ड में बैठे कि यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी, डिलीवरी वार्ड बहुत सेंसिटिव जगह होता है। वहाँ बैठे रहे लगभग आधे घंटे के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद वहाँ फिर से पीएसी वापस वहाँ इन कर गए, पीएसी वहाँ इन कर गए, वहाँ से भी हम लोगों को भगाना शुरू किया। तो वहाँ उन्होंने जब चार्ज किया तो वहाँ स्टूडेंट के साथ साथ जितने पेशेंट्स और अटेंडेंट्स उनके जितने मिल रहे थे उन्होंने साथ में उसको भी मारना शुरू कर दिया पीएसी ने। फिर हम लोग वहाँ से निकल के किसी तरह सुंदरलाल हॉस्पिटल में ही एक सुलभ शौचालय लगा हुआ है उसकी छत पे पहुँचे, किसी तरह पेड़ पौधे पर चढ़ के सुबह के 3 बजे तक उस छत पे गुजारी मच्छरों के बीच, फिर वहाँ से निकल कर किसी तरह अपने रूम पे पहुँचे कैंपस के बाहर। तब तो पुलिस का पहरा वहाँ लगा हुआ ही था, कोई जान से नहीं था, जो जहाँ दिख रहा था कैंपस में उसके ऊपर मतलब बेरहम तरीके से वो चली, पुलिस मार ही रही थी। मतलब कोई आपको एक्सक्यूज देने का भी मौका नहीं मिला कि आप कैंपस में क्यों घूम रहे हो।
उसकी इस घटना के बाद आप कैसे जुड़े रहे, आप हैव यू, आप इसके मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, इन मांगों के साथ?
बिल्कुल, इस घटना के बाद जो चेंजेस आने थे, जिस डिमांड्स को लेकर के लड़कियां बैठी थी, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, तो मतलब उसमें उन्होंने इक्वालिटी मतलब जस्टिस के बजाय उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। उसके तुरंत बाद कैमरे लग गए हर एक हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे, कहीं रोड पे जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगे नहीं है अभी तक। वो रोड वैसे ही वैकेंट है, जहाँ छेड़खानी हुई तो वहाँ आज भी कैमरा नहीं है, वो अंधेरा ही रहता है वहाँ पे। वहाँ 2 बैरिकेड लगा दिए गए हैं, एक गार्ड रहता है वहाँ, कोई आज भी कुछ नहीं। तो कैमरा लगा दिया गया, उसके बाद सेंसरशिप ये लगाने लगा कि लड़के अब कोई फ्रेंड, अब मतलब किसी लड़की का कोई फ्रेंड उससे मिलने हॉस्टल नहीं जा सकता। ये 1-1.5 महीने चला कि तुम लोग कैमरे की नज़र में हो, तुम लोग ऐसा मत करो, मतलब वो कैमरा दिखा के उन्होंने सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया कि मतलब कुछ बोले ना। बट मोमेंट के बाद एक बड़ा चीज़ ये आया था चेंजेस की लड़कियों, मतलब उनका डर खत्म हो गया था, उनको पता चल गया था कि अब ये लास्ट लाठी मार सकते हैं, इससे अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद एक डिजिटल चेंज हमारे मतलब मूवमेंट में आया कि अब काफ़ी लोग बढ़ के आने, अब किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा तो तुरंत हमारे पास वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आ जा चुका है। मतलब अब एक हो गया कि हमारे पास बल है, मतलब कुछ लोग हैं जो अच्छा कर बोल रहे हैं सामने आके, पहले 3-4 थे, आज 30-40 हो चुके हैं, अब बोल रहे हैं लोग आ करके। उसके बाद फिर वीवाई चांसलर को फेयरवेल दिया गया था, 26 नवंबर को उनको फेयरवेल दिया गया, और उस दिन भी प्रोटेस्ट हुआ, उस दिन भी विरोध किया। फिर उनके कुछ सपोर्ट वाले उस दिन भी वहाँ पे आके वाइस चांसलर जिंदाबाद के नारे लगे हैं, उस दिन भी बाकायदा उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेजेस दिया गया, कहा गया कि उनके जो टर्म था वो बीएचयू का सरनेम युग था, इससे अच्छा बीएचयू कभी कर ही नहीं सकता था जो 3 साल में किया है।
तो क्योंकि आप एवीवीपी से जुड़े हुए थे, आपके बाकी जो साथी थे उन लोगों के तरफ से आपके मतलब वाज देयर एनी रेपरकशन ऑन यू?
अब संगठन के अलग ही जाना पड़ा मुझे, क्योंकि उनका स्टैंड अलग था इस मूवमेंट को लेकर के। तो मुझे पता था कि 2 दिनों से क्या चल रहा मूवमेंट और क्या नहीं चल रहा, तो मतलब मुझे लगा कि संगठन से ज़्यादा जरूरी यह है कि सच और गलत का साथ दिया जाए। तो फिर मैं एवीपी छोड़ के मैं अलग हो गया।
आप जे सी और
आई एम एन इंडिपेंडेंट, जो जे सी ज्वाइन किया एज ए इंडिपेंडेंट स्टैक होल्डर, एज ए
इंडिपेंडेंट स्टूडेंट। पर्सनली क्या चेंज हुआ आप में, आपको क्या लगता है व्हाट वाज व्हाट चेंज फॉर यू
पर्सनली? ये चेंज सबसे बड़ी चेंज ये है कि मतलब वो जो डर होता है ना आपके अंदर, कि प्रॉक्टर्स को देख करके, पुलिस को देख करके, जो एक आम इंसान डरता है, एक उनको पता है कि वो सिक्योरिटी के लिए हमारे, फिर भी डर लगता है कि सामने है कुछ ऑब्जेक्शन कर दे, कुछ बोल दे, कुछ पूछ ही दे। तो ये सब चीज़ों का डर खत्म हो चुका है पूरे मूवमेंट के बाद से। अब कहीं भी गलत दिखता है तो लगता है कि हाँ बोल देना चाहिए यूनिवर्सिटी में, और बोलना मतलब अब वो बन चुका है कि मैं बोल लेता हूँ। पहले नहीं कर पाता था, लोगों से बोल नहीं पाता, किसी भी चीज़ को लेकर के ओपन नहीं हो पाता था। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मतलब अब खुले तौर पे अपने विचारों को सामने रख सकता हूँ। ये सबसे बड़ी ये मेरी मजबूती मिली है उस मूवमेंट से।
एंड यू फील मतलब जो एवीपी के साथ आप अलग हो गए उसमें
एक आपके पास लोड होता है ना पार्टी में बंद करके, आप पार्टी लाइन में बंदे तो आपको नहीं। जैसे एबीपी ने इस पूरे मूवमेंट में एबीपी के और भी लोग थे साथ में, पर 23 सितंबर को जब मूवमेंट खत्म हुआ उसके अगले दिन वो खुद धरने पे बैठ गए अपने पार्टी का बैनर लगा करके, ये आरोप लगाते हुए कि पूरे मूवमेंट को वामपंथी संगठनों ने हड़प लिया है। आप खुद झंडे बैनर लगा करके राजनीति कर रहे हो और फिर आरोप लगाते हो कि दूसरा सामने झंडा लगा के आ रहा, जबकि 2 दिनों में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उस चीज़ को लेकर के बहस हुई कि आप लोगों का मतलब मुद्दा ये नहीं था कि सुलझना चाहिए वहाँ पे, आप उसको अपना पॉलिटिसाइज करना चाह रहे थे। इसी चीज़ को लेकर के बहस हुई, पहले से भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे मूवमेंट के दौरान भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, काफ़ी नारों को लगाने को लेकर के, इशूज़ को लेकर के, डिमांड चार्टर को लेकर के, तो कॉन्फ्लिक्ट 3 दिनों से चल रहा था। फिर मैंने सब कुछ बात करके लास्ट में उसको छोड़ ही दिया।
आगे का क्या प्लान है आपका?
आगे का प्लान अभी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिव रहना है, मतलब इन सब चीज़ों में कहीं भी आसपास के कुछ भी हो रहा है तो, मतलब अभी तो जेसी के साथ ही काम कर रहे हैं तो हम लोग आज यहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों के लिए साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों के आंदोलन से फिलहाल। और बीएचयू के अंदर भी तो इश्यूज चल ही रहे हैं, मतलब मूवमेंट किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तो मिला नहीं है, तो अलग अलग और पे हॉस्टल्स के इश्यूज हैं ही, एकेडमिक इश्यूज हैं ही, लाइब्रेरी इश्यूज हैं ही, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ को लेकर जुड़े ही रहना है और पढ़ाई अपनी अभी कंटिन्यू तो रखनी है फिलहाल।
ठीक है, थैंक यू सो मच।